उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर वो उत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ। अपने साक्षात्कारों की विशेष श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक और साक्षात्कार लाए हैं और कार्यक्रम की शुरुआत इसी साक्षात्कार से हम करने जा रहे हैं। श्रोताओं, हमारे क्षेत्रीय संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा जो सिक्किम में मौजूद हैं, उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर के साथ विशेष बातचीत की और इस बातचीत का फोकस सिक्किम राज्य की 50वीं वर्षगांठ, सिक्किम राज्य का पर्यटन और तमाम पहलू रहे। तो आइए ये विशेष साक्षात्कार आपको सुनवाते हैं।
आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ माननीय राज्यपाल महोदय मौजूद है, हम सर का स्वागत करते हैं।
धन्यवाद।
जैसे सर, हम लोग जानते हैं कि अपना प्रदेश 50वीं वर्ष मना रहे हैं, इस सुदीर्घ यात्रा को सर आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये हमारे लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है कि सिक्किम भारत के गणराज्य में मिले 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हम दृष्टि से पिछले 3-4 माह से हम भिन्न भिन्न प्रकार से 50 वर्ष ब्लॉक स्तर तक कैसे मने, वो सरकार भी तैयारी कर रही है, चिंता भी कर रही है, आम लोगों को कैसा इन्वॉल्वमेंट हो कि हमको गणतंत्र बने 50 वर्ष हुए हैं, उसको हम तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टाइम दिया है, हम उनके हाथ से उद्घाटन भी करवाएंगे, कुछ फाउंडेशन भी करेंगे और एक बड़ा मीटिंग का आयोजन भी हम करने वाले हैं। आम नागरिक तक 50 वर्ष पूरे हुए ये संकल्प है और इसके साथ साथ हम भी 50 वर्ष में ये संकल्प करवा रहे हैं कि जो सिक्किम की अपनी पहचान है वो पहचान हम कैसे बनाए रखें, उसके साथ हम ये मना रहे हैं उत्सव।
पिछले जो 5 दशकों में सिक्किम की प्रगति जो है, जो विकास है, बुनियादी ढांचे है, सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे मुद्दा क्या रहा और इस पे या कहेंगे उस पे सबसे महत्वपूर्ण दौर कौन सा था?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो मैं मानता हूँ कि सिक्किम एक ऐसी परिस्थितियों में आया हो जहाँ प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक सिचुएशन जो है वो सबसे कठिन है
जी।
इसलिए एक सबसे पहली थी कनेक्टिविटी की, और कनेक्टिविटी मेरे आने के बाद जैसे लगा NH-10 है, किसी कारणवश से वो मेंटेनेंस किसी और स्टेट को दे रखा था, तो हमने पहला काम तो ये कहा कि तुरंत NH-10 कम्प्लीट हो, तैयार हो, ठीक प्रकार से चले। लेकिन कोई भरोसा नहीं, अब कल रात को लैंडस्लाइड हो गई नॉर्थ में, तो यहाँ ये जो प्राकृतिक है, लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी है और यहाँ के जो लोगों की भावना है हॉस्पिटलिटी की, वो इतने आदरपूर्वक लोगों को याद करते हैं। मैं लगभग 8-9 महीने हो गए, मुझे कहीं पे भी टूरिस्ट की ओर से कोई कंप्लेंट नहीं मिली। तो ये पहला, क्यों, मैं राजस्थान भी रहा हूँ, जयपुर गुजरात भी रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ, वहाँ प्रतिदिन टूरिस्टों की कंप्लेंट मिलती है, लेकिन यहाँ के लोगों की लियाकत ऐसी तो अच्छी है, यहाँ के लोग इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं कि जिनको अतिथियों का स्वागत करने का, सत्कार करने का बड़ा आनंद आता है। तो सबसे बड़ी पहचान तो ये है यहाँ की। इसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनिक वाली खेती है, तो ऑर्गेनिक खेती को भी और हम आगे कैसे बढ़ाएं, यहाँ का प्रोडक्ट सामूहिक रूप से कैसे बाहर जाए, और ये सारी परिस्थिति हमारे सामने, डेवलपमेंट तो मूल रूप से था ही क्योंकि लेट जुड़ा, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी। जैसे हमने एयरपोर्ट आते ही बनाया, लेकिन 23 की बात है, उस एयरपोर्ट को काफ़ी डैमेज कर दिया, अब पीछे लगे हैं तब तक भी। तो मेटी तो चीज़ है कि कनेक्टिविटी हमारी बढ़े, इसकी हम चिंता करते हैं और मुझे लगता है कि हम 2-3 माह में इस प्रदेश के, और इसके साथ साथ एक पैरल सड़क रोड वगैरह भी हमने DPR बनवाई है, उस रोड से हमें जो कभी ऑल वेदर चालू रहे, ऐसा भी हम सोच रहे हैं।
आपने ऑर्गेनिक खेती की बात कही, यहाँ पे जैविक खेती, ये सिक्किम जो है पूरे देश के लिए एक आरही है, एक निदर्शन है, तो इसके प्रसार को और जैसे अधिक बढ़ावा मिले, मार्केटिंग ज्यादा बाहर भी मार्केटिंग किया जा सके, सर इसके लिए क्या प्रयास रहेगी?
मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग इनके सारे केवी, बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ केवी के मात्र 4-2 थे, तो केवी के कम से कम ब्लॉक स्तर तक बने, ताकि ऑर्गेनिक खेती करने वाले को सही समय पे सही दिशा और सही मिले। इसके साथ सीड्स की उपलब्धि को तो सीड्स के लिए भी मैं व्यवस्था करता हूँ, और मेरा प्रयत्न रखता है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक खेती करने वालों का स्वयं जाके खेती दूँ, क्योंकि मैं खुद मूल रूप से किसान हूँ और मैं एकदम 50-45 की डिग्री में अच्छी खेती कर रहा हूँ, पॉली हाउस के माध्यम से कर रहा हूँ। इसके साथ साथ वाटर टैंक बनाने की भी मैंने बताया कि हर बार पानी मिले, क्योंकि यहाँ पानी टैंक तो है नहीं, तो वर्षा पर निर्भर है, लेकिन वर्षा आई और चला जाता है, और पहाड़ी बेल्ट होने से पानी जैसे ही गिरता है वो नीचे चला जाता है, ऊपर के इलाके में पानी सूख जाता है। तो हम पानी की पॉन्ड भी बने इसके साथ साथ, और उनको प्रॉपर मार्केटिंग मिले। तो जैसे हाट बाजार लगे, मैं स्वयं जब जाता हूँ तो मैं स्वयं ऑनलाइन उनसे खेती ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदता भी हूँ। इसके साथ साथ सरकार से भी आग्रह किया कि ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्शन को कहीं एक जगह लाने की सुविधा हो, FBO बने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन FBO के माध्यम से ऑर्गेनिक जितनी भी उत्पादन है वो एक जगह आए और वहाँ उनको मार। आज क्या हो रहा है कि लोकल लोग यहाँ से ले रहे हैं और वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिल्ली जाते जाते लगभग कई गुना अधिक रेट में बिकता है। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ का किसान इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, क्योंकि पूरे देश में ये पहचान है कि खेती सिक्किम फुल फ्लैश ऑर्गेनिक खेती करता है, तो वो ऑर्गेनिक पदार्थ दिल्ली भी जाए, बॉम्बे भी जाए, दक्षिण के सारे स्टेट में भी जाए, इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं।
लगभग 9 महीने हो चुके हैं सर आपको यहाँ रहते हुए, इस प्रदेश के लगभग हर जगह का आपने दौरा किया है, सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगी?
देखिए, सबसे बढ़िया बात मुझे लोगों का व्यवहार लगा। मैं कहीं पे भी गया हूँ, मैं पहली बार देखा कि गाड़ी गुजरती है, कोई दुकान पे बैठा है, पैदल चल रहा है, घर के बाहर बैठा तो उठ करके प्रणाम करता है। ये जो उनकी एक क्वालिटी है, मैं इस क्वालिटी को बहुत, मैं कहता हूँ कुछ कल्पना नहीं कर सकता ऐसा भी दृश्य हो सकता। इसके साथ साथ डे टू डे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक होता है, रोड तो जनता, लोकल जनता आकर के टूरिस्ट की भी मदद करता है, रोड ब्लॉक खुलवाने में मदद करता है, तो ये मैंने यहाँ नई चीज़ देखी। दूसरा जो यहाँ का होम स्टे है, होम स्टे जिस प्रकार से उन्होंने बना रखे और जिस आत्मीयता के भाव से, जिस आदरपूर्वक भाव से होम स्टे में टूरिस्ट को सेवा करता, ये मैंने यहाँ नई चीज़ देखी है। ये कई ऐसी चीज़ें, इसके साथ साथ मैं लगभग सारे बॉर्डर घूम चुका और मैं बॉर्डर पे भी जिस प्रकार से मैंने देखा है, अभी डोक्याला पास एक नया और खुला है जो लगभग 17,000 से भी ऊपर फिट पे, वहाँ तक हमारे टैंक पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ जो एक नई प्लानिंग बन रही है पूरे बॉर्डर को सुरक्षित करने की, और अभी अभी हमने ये तय किया है जो दिसंबर में अनाउंस भी हो गया, रणभूमि दर्शन। रणभूमि दर्शन सिक्किम के लिए बहुत बड़ा एक टूरिस्ट आकर्षण करने का स्थान होगा, जहाँ चोला है, जहाँ नाथुला है और जहाँ आपके ये डोकला है, ये तीनों स्थान हम उसको डेवलप कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं जब पहली बार नाथुला गया तो नाथुला दिवस यहाँ 11 सितंबर को सरकार मनाती है, एक तरह से नाथुला जाते हैं, चीफ जस्टिस भी जाते हैं और भी जाते हैं, एक छोटा मोटा कार्यक्रम होता है। मैंने पिछली बार जब मैं गया, चीफ जस्टिस साहब भी थे, CM साहब भी थे, मैंने उनसे कहा कि नाथुला दिवस नहीं, नाथुला विजय दिवस होना चाहिए, इसलिए अगली बार हम इसको नाथुला विजय दिवस मनाएंगे। और सरकार ने भी, स्टेट सरकार ने भी बहुत बड़ा बजट दिया, जहाँ पार्किंग है, कैफेटेरिया है, वो बने, ये चीज़ें मैंने देखी है। और मैंने यहाँ भी ये किया है कि ये जो वाकडोगरा से गंगटोक तक का रास्ता है, इसमें कोई मिडवे नहीं था, कहीं भी वॉशरूम की भी टूरिस्ट के हम लोगों को तो एक मिलिट्री ने भरा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमने इस बीच में भी एक दुर्घटना 23 में हो गई थी, आपको अगर ध्यान हो, जहाँ हमारे 22 जवान लोगों को बचाने में, एम्बुलेंस बचाने में बह गए। हम उस स्थान को हमने वहाँ प्रेरणा स्थल बनाया और प्रेरणा स्थल बहुत सुंदर बनाया है, और हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि लगभग मिडवे सा पड़ता है तो यहाँ एक बढ़िया वॉशरूम सा बने, उसके साथ साथ एक कैफेटेरिया बने, और वो जो प्रेरणा स्थल है वहाँ सब सैनिकों ने जो शहीद हुए उनकी याददाश्त में 10 मिनट टूरिस्ट भी देख के जाए, तो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगी।
जी, अगर हम पर्यटक की बात करें, जैसे आपने बताया अभी पर्यटक भरे हुए हैं इस प्रदेश में, बहुत ही खूबसूरत जगह है, श्रोता सुन रहे हैं देश विदेश के, तो जरूर आए यहाँ घूमने के लिए। तो जब पर्यटक आते हैं, विकास होता है, तो उसके कुछ शर्तें भी होते हैं, विकास कभी कभी कुछ बलिदान भी ले लेते हैं, कुछ मांगते भी है, तो विकास के साथ इसकी प्रकृति के साथ एक संतुलन बना रहे, तो सर आप इसके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान रही है, फोर्स के लोग भी हमारे ध्यान रखते हैं, मैक्सिमम घूमने नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो सबसे अच्छी मैंने यहाँ देखी है अगर कहीं गलती से पर्यटक ने नाथुला भी रास्ते में देखा है, जगह जगह डस्टबिन, बड़े बड़े डस्टबिन लगाए हुए, फिर भी बाहर के लोगों को वो कल्पना नहीं रहती। मैंने आप प्रत्यक्ष रूप से देखा, अगर सेना की गाड़ी भी निकल रही है और वहाँ कुछ कचरा पड़ा देखा तो गाड़ी रोक करके वो कचरा उसमें डालते हैं। ये अभ्यास कैसे बढ़े यहाँ लगे रेगुलर, और पर्यटनों को भी हम लगातार आग्रह करें कि कम से कम, और ये अच्छी बात है कि जगह जगह डस्टबिन लगा रखे हैं, जगह जगह इन्होंने प्लास्टिक क्रश की मशीनें लगा रखी है। और आपने देखा होगा, शिमला भी देखा होगा, आपने दार्जिलिंग भी देखा होगा, लेकिन जो यहाँ एमजी मार्केट का दृश्य है वो दृश्य आपको और जगह जगह अलर्ट भी करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है, यहाँ का टैक्सी ड्राइवर भी अगर कोई पर्यटक गाड़ी से फेंक देता है तो गाड़ी रोक करके कहता नहीं था वापस लाइए उसको, यहाँ ऐसा। तो ये जो कल्पना कैसे बढ़े, अवेयरनेस कैसे बढ़े, इसका समय समय पर, और मैं जब भी जनता के बीच में जाता हूँ तो ये आग्रह मैं स्वयं भी करता हूँ कि हम सिक्किम की जो मूल पहचान है, एक ऑर्गेनिक की, एक स्वच्छता की, इस स्वच्छता की विशेष रूप से पर्यटन बढ़ रहा है तो बनाने का दायित्व यहाँ के नागरिकों को है। पर्यटक आएगा घूमने के लिए आएगा, स्वाभाविक है कुछ होगा, लेकिन वो उसको सुधारने रखता है
जी। एक प्रदेश की जो विकास है उसकी बहुत ज़्यादा बुनियाद या उसको डिपेंड है युवा शक्ति के ऊपर, जो प्रदेश के युवा शक्ति को रोजगार ज़्यादा मिले, खेल कूद में विकास हो, इसके लिए सर आपका क्या उद्देश्य रहेगा या क्या प्लानिंग है?
मेरा अनुभव तो है कि खेल कूद यहाँ हर गांव में है और हर गांव में खेलों की रुचि है, और कई प्रकार के एसोसिएशन के दो, क्लब के दो, कई प्रकार के यूनियन के दो, ऐसे खेलों की अलग अलग बनी हुई। मैं आज अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद एक कल्पना की थी दिव्यांगों के बारे में, अभी मैं दिव्यांगों का ओलंपिक का खुद उद्घाटन करके आया हूँ। इतने अच्छे बच्चे, और एक बच्चा तो है जो वेनिस में जाकर के स्वर्ण पदक जीत के आया। तो ये जो खेलों के प्रति रुचि है, लेकिन ये खेलों का एक चयन बने, मेरा इसमें थोड़ा सुझाव है सरकार से भी, और मैं करता हूँ प्रयत्न, एक ऐसा कोई जिसको बोलते हैं ना कि सिस्टम बने जिसमें खेल खेलने वाले को प्रोत्साहन मिले, वो अपने लिए जगह तो खेल रहे हैं लेकिन उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, डे टू डे उनकी प्रैक्टिस कैसे हो, डे टू डे उनका काम करने का मौका मिले, नहीं तो क्या है कि गांव में वो ठीक है खेल दिए फिर आगे चले गए, तो वो कहीं जहाँ जाए वहाँ, तो उसके लिए एक वो बनाने की भी हम चिंता कर रहे हैं। खेल भी बढ़े, युवाओं का तो यहाँ सरकार ने अच्छा कर रखा है, घर परिवार से एक फ्री देते हैं वो, इसके साथ साथ एक और अच्छा काम करते हैं कि घर में बच्चा पैदा होते 180 पेड़ लगाते हैं। तो ये जो चीज़ें लगातार चलती रहे इसकी सरकार भी चिंता करती है, और एज ए राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते, मैं भी जगह जगह जब जाता हूँ तो आग्रह करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जनता के बीच में बैठने का। मैं लगभग काफ़ी पंचायतों में पूरी पंचायत के साथ बैठा हूँ, नॉर्थ की जो विकट परिस्थितियों में अगस्त के माह में जा करके भी दोनों जो झुमसा है उन दोनों झुमसों के साथ भी डिटेल बैठ के मैंने चर्चा की है।
अगर आपकी अनुमति हो तो एक व्यक्तिगत सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप एक प्रखर वक्ता है, आपको जब सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप व्यक्तिगत तौर पे क्या पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, क्या पढ़ते हैं, श्रोता के लिए आप क्या बताएंगे?
पढ़ने का इतिहास और मुझे बहुत शौक है, और लगभग मैं अभी भी टिल टुडे भी मैंने पढ़ रखी है कर्ण की आत्मकथा, अभी भी मैं कर्ण की आत्मा पढ़ता हूँ आज भी। और ज्यादातर मुझे संवाद करने का शौक है
जी,
कि मैं गांव में जाऊं, गांव में बैठूं या खाली भी बैठूं तो मेरा मन लगता है कि चलो कोई कार्यक्रम नहीं है, चलो किसी जाके पंचायत में चलेंगे। तो मुझे लोगों से समझने, देखिए गांव का व्यक्ति भी हमें कई ऐसी चीज़ें बता देता है, कई ऐसे अच्छे सुझाव दे सकता है, कई अच्छे ऐसे काम बता सकता है जिसकी हम भी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं सदैव, क्योंकि छोटे गाँव का रहने वाला हूँ, तो छोटे गाँव के रहने के लिए मुझे गाँव के लोगों से और स्थानीय लोगों से संवाद करने का सबसे ज़्यादा शौक है, और पढ़ने का तो ही है, लिखने का भी बहुत ज्यादा मेरा स्वभाव नहीं है।
सर आकाशवाणी सुनते हैं क्या, अच्छा लगता है आपको?
नहीं, बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता भी हूँ
जी। बात करें जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत 2047 के लिए, सिक्किम कैसे जोड़ेंगे सर?
देखिए 2047 तक सिक्किम निश्चित रूप से सबसे अग्रणी पंक्ति में जुड़ेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि सिक्किम जिस प्रकार से काम पे लगा है, जो योजनाएं सिक्किम लागू कर रहा है, और आज भी मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं होगी मुझे लगता है यहाँ उसी ढंग से उनका फॉलो हो रहा है। आज मुझे भी प्रश्न, मैंने अभी कहा है कि ट्वीट भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने तो 14 में सोचा था दिव्यांगों के बारे में, आज मैं खुद वो ओलंपिक देख के आया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी की सोच यहाँ धरती पर खूब उतर रही है, और राज्य सरकार भी, जैसे अभी आपने देखा होगा जोरथांग में अभी हमने सूर्य मंदिर की नींव रखी, वह मेले में, और सबसे बड़ी बात है यहाँ मेले बहुत लगते हैं, हर एक बिरादरी के लगेंगे, हर एक संस्था के लगेंगे, हर गांव में लगेंगे। उन मेलों में जब हम जाते हैं तो उसमें हम प्रधानमंत्री जी की योजना है, और इसके साथ साथ मैं स्वयं जब जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग लेता हूँ तो मैं उनसे पर्टिकुलर पूछता हूँ कि तुम्हारे यहाँ शौचालय कितने बने, तुम्हारे आवास कितने बने, तुम्हारे और ये चीज़ें प्रधानमंत्री की चीज़ें कितनी बनी, तुम्हारे इन चीज़ों में कहाँ कहाँ कमी है। फॉलोअप हम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और उसका मुझे लाभ भी हो रहा है।
और सर जैसे आपने बताया स्वच्छता के लिए, क्लीननेस के लिए, जैविक खेती ले, सिक्किम पूर्वोत्तर के लिए हो या देश के बाकी प्रदेश के लिए हो, कैसे आदर्श बन चुका है और आने वाले दिनों में ये प्रदेश बाकी लोगों को कैसे सर प्रोत्साहित करेंगे?
देखिए मैं चाहता हूं कि मैं अन्य स्टेट्स के लोगों को भी यहाँ बुलाऊं, जैसे मैंने सोचा राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से लोगों को बुलाऊं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ की लोकल गाय या नहीं तो दूसरी गाय ला करके लोग देसी गाय के दूध को कैसे मिल्क की डेयरी वजह बने, इसी तरह हम कॉपरेटिव सिस्टम बना। ये जो एफ भी एक तरह से कॉपरेटिव टाइप ही है कि 10 किसान मिलकर के अपना माल इकट्ठा करे फिर बेचे, तो इस तरह की प्लानिंग हम कर रहे हैं ताकि उससे क्या होगा कि अन्य स्टेट भी हमारा देखने आएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आने के बाद कम से कम किसान क्षेत्र में काम करने वाले 3-4 डेलीगेशन यहाँ आए, मुझे मिले, हमने उनको दिखाया है। तो यहाँ कई प्रकार की चीजें जैसे शील्ड्स नहीं मिलता प्रॉपर, उनका प्रोडक्शन का रेट नहीं मिलता, पर्टिकुलर वाले इसकी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ेगा।
और सर आखिर में, क्योंकि फिर से दोहराता हूँ, हम लोग का प्रदेश वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर सर आप आकाशवाणी के जरिए प्रदेश के युवाओं को और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं इस 50 वर्ष पूर्ण होने पे युवाओं को संदेश दूंगा कि हमारे पुरखों ने सिक्किम में जो एक सिक्किम की पहचान बनाई है, उस पहचान को बनाए रखते हुए उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए अपना दिमाग, दिल और दिमाग लगाए, मेहनत करे, परिश्रम करे। इसके साथ साथ सिक्किम की पूरी जनता को कहना चाहूंगा कि वो पूरे सिक्किम का, हमने जो हमारी पहचान है, हमारी सिंसियरिटी की पहचान है, हमारी अतिथि सत्कार की पहचान है, हम अतिथि देवो भव मानते हैं, उसको भी कैसे बढ़ाए और आने वाली पीढ़ी को भी कैसे सिखाए, ऐसा मेरा है। और सिक्किम 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हर व्यक्ति सिक्किम का इसको एक उत्साह के रूप में ले, एक जोश के रूप में ले, एक त्यौहार के रूप में ले, एक पूजा के रूप में ले कि ये पूजा हमारी 50 साल की, हम लोकतंत्र में 50 साल पूरे कर रहे हैं। इन शुभकामनाओं के साथ मैं उनसे बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि ये 50 वर्ष हमारे सिक्किम को आने वाले समय में और आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात निवेदन करता हूँ।
जी सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, बहुत सी बातें हम लोग के साथ साझा की। आकाशवाणी की तरफ से फिर से आपका सर आभार,
बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बौद्ध धर्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहाँ जब आप घूमने जाएंगे तो बहुत से बौद्ध मठ आपको दिखाई देंगे। बौद्ध संस्कृति के लिहाज से महत्वपूर्ण इस राज्य ने एक विशेष आयोजन किया है और यहाँ पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में आयोजित होने वाले इस विशेष बौद्ध सम्मेलन में विद्वान और भिक्षुक शामिल हो रहे हैं। तो आइए अपने संवाददाता राकेश ढोले से एक विशेष रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस विशेष बौद्ध सम्मेलन और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध संस्कृति की अहमियत पर एक विशेष रिपोर्ट हमें भेजी है। आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं।
नामसाई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह सम्मेलन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन द्वारा महाबोधि मैत्री मंडल के सहयोग से किया गया। इस आयोजन में भारत सहित कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के अनेक बौद्ध भिक्षु और विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने किया। उद्घाटन समारोह में भूटान के गुवाहाटी स्थित कौंसल जनरल जिगमे थिनले नामग्याल, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के महानिदेशक अभिजीत हल्दर तथा महासचिव छर्चे जंगचुप चोयदेन रिम्पोचे जैसे प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित थी। सम्मेलन के दौरान क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व, कला और संस्कृति तथा बौद्ध धर्म के पड़ोसी देशों पर बड़े प्रभाव और उनके परस्पर संबंधों पर विचार से चर्चा की गई। मंगलवार को सम्मेलन के अंतिम दिन नामसाई के गोल्डन पगोडा स्थित विपासना हॉल में म्यांमार और थाईलैंड में हाल ही में हुए भूकंपों में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। प्रसार भारती से बात करते हुए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के महानिदेशक अभिजीत हल्दर ने बताया कि नामसाई में इस प्रकार का सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया है।
बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव यहाँ पे कराने का मकसद ये था कि इस जगह पे इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में और इस स्टेट में इतना बढ़िया तरीके से महायाना और थेरावादा बुद्धिज्म को मेंटेन किया गया है कि ये बड़ा यूनिक है, बड़ा बड़ा अद्भुत सा एक केस स्टडी मैं कहूँगा, जहाँ की आपको दिखाई देगा कि थेरावादा बुद्धिज्म के जो मूल भाव है, रहस्य है, इनको किस तरीके से यहाँ के लोगों ने ट्रेडिशनली पकड़ के रखा हुआ है। और तो हमारा उद्देश्य ये रहा कि इस जगह का जो यूनिक संस्कृति है इसको भारत में दूसरे जगहों में भी फैलाया जाए या दिखाया जाए लोगों को, किस तरीके से देखिए अपने इतने कम्युनिटीज़ मिलके, इतने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, ये लोग आपस में मिलके थेरावादा बुद्धिज़्म को जोड़ के अपने सोसाइटी और अपने कम्युनिटी को एक तरफ से एक संगठित करके रखा हुआ है। ये एक उदाहरण है दूसरे जगहों के लिए भी, जहाँ हमने कई नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लोगों को बुलाया और बाहर विदेश से 8 या 9 देशों के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं यहाँ पे।
इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर के विद्वानों को अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध बौद्ध विरासत को दिखाने और समझने का अवसर प्रदान करना था। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और इस बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सिविल सेवकों को संबोधित किया और साथ ही उन्होंने सिविल सेवा में कार्य करने वाले उत्कृष्ट अधिकारियों को और लोक सेवकों को पुरस्कृत भी किया। इसमें खासतौर पर पुरस्कारों की श्रेणी में जिला स्तर पर अलग श्रेणी बनाई गई थी। एस्पिरेशनल ब्लॉक स्तर पर भी एक विशेष श्रेणी थी, जिसमें देश के दूर दराज के इलाकों से लेकर मुख्य धारा के अलग अलग ब्लॉक्स में हो रहे उत्कृष्ट कार्य और सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के प्रयासों को लेकर विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही सरकार की बहुत सी पहल जो नवाचार और इनोवेशन से जुड़ी हुई थी, उन योजनाओं को भी पुरस्कृत किया गया। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ये पुरस्कार हर साल सिविल सेवा दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं और इस बार पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम के तिनसुखिया जिले को जिला स्तर का एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही त्रिपुरा में ढलाई क्षेत्र के गंगानगर ब्लॉक को भी सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को तिनसुखिया जिले लिए चलते हैं और वहां के जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमने विस्तार से बात की और ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से तिनसुखिया जिले में सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।
हम सीधे जुड़ते हैं स्वप्निल पॉल जी के साथ, जो असम के तिनसुखिया जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधीश हैं। बहुत स्वागत है स्वप्निल जी कार्यक्रम में आपका, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि असम के तिनसुखिया जिले में किस तरह से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा भी सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर कि वहां की सक्षम आंगनवाड़ी योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या और भी दूसरी तमाम योजनाओं का जिक्र हुआ जिनकी सफलता 100% पहुंच रही है लोगों तक, कुछ आप बताएं इस बारे में।
लास्ट 2 साल में हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन 6 लाख से ज्यादा लोगों को अंतर्भुक्त किया है EKYC के माध्यम से, और उसमें एक हमने जन भागीदारी का प्रयास भी किया है कि विलेज लेवल पे जाके कैंप मोड में बाय इन्वॉल्विंग द एंटायर सिटीजनरी हमने वो ट्राई किया है कि ये सारा सैचुरेशन मोड में हो। द्वितीय जो स्कीम मेरे रिमार्क में अभी आ रहा है वो है हाउसिंग PMAY रूरल और अर्बन। हमने कुल मिला के 30,000 से ज्यादा हाउस होल्ड लास्ट 2 साल में कंप्लीट किया है, और कुछ कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स जो हमने लिया है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सबसे पहले ये हुआ कि जब हम लोग हाउसेस सैंक्शन करते थे तब ये चीज पता चला कि सिंस ये एक DBT स्कीम है, बेनिफिशियरीज को मिडिलमैन एक्सप्लॉइट करते थे, कि मतलब खुद को बोलते थे कि हम लोग घर बना देंगे, फिर घर भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होती थी और लोग भी पैसा दे देते थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक मेसन का लिस्ट बनाया सारा ब्लॉक में, और ये सारा बेनिफिशियरीज तक शेयर किया गया कि ये मेसन ही जेन्युइन मेसन है और उनसे ही आप लोग ये ले सकते हैं। जस्ट ये एक पॉजिटिविटी कि लोग मिडिलमैन के ट्रैप में ना पड़े। दूसरा चीज जो हमने किया है कि गांव पंचायत लेवल में एग्जीक्यूशन होती है। हमारे जिला में भी 86 गांव पंचायत है, तो सारा गांव पंचायत के लेवल में कंपटीशन करवाने के लिए एक 100 डेज का चैलेंज करा गया था कि 100 दिन में कौन सा जीपी सबसे ज्यादा घर कंप्लीट कर सकता है।
जी जी।
और फाइनली गृह प्रवेश का एक दिन रखा गया था कि जिसमें जितना हाउसेस कंप्लीटेड है उसको हम एक ही दिन में इनॉग्रेट करेंगे। तो ये छोटा छोटा स्टेप फाइनली जाके रिजल्ट दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल पॉल जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
श्रोताओं, अब हम आपको लिए चल रहे हैं त्रिपुरा के गंगानगर ब्लॉक और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की श्रेणी में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर इस ब्लॉक को भी सम्मानित किया गया, जहां पर हो रहे कुछ इनोवेटिव योजनाओं और सरकार की तमाम योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर ये पुरस्कार दिया गया है। आइए हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं।
गंगानगर ब्लॉक की सफलता की कहानी त्रिपुरा के धलाई जिले के आकांक्षी जिले में न केवल राज्य के अन्य ब्लॉकों और जिलों को बल्कि देश भर के क्षेत्रों को भी प्रेरित करेगी। मार्च 2023 में 456वें स्थान पर रहा गंगानगर ब्लॉक सितंबर 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त की। स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि और अन्य 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतों में जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए तीव्र और महत्वाकांक्षी कदमों ने गंगानगर ग्राम समिति और ब्लॉक क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। पीएम डिवाइन योजना के तहत सोलार माइक्रोग्रिड परियोजना को लागू कर और एनईसी फंड का अधिकतम उपयोग करते हुए उन परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई जो अब तक बिजली से वंचित थे। प्रशासन ने आंगनवाड़ियों को उन्नत करने, शौचालय सुविधाओं में सुधार जैसे कई ठोस कदम उठाए। आकाशवाणी ने धलाई जिले के जिलाधिकारी और कलेक्टर साजू वाहिद ए से बात की, जिन्हें इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ।
2023 मार्च को तब हमारा पहला डेल्टा रैंकिंग जब डिक्लेयर किए थे, गंगानगर का रैंक था 456। तो वहां से लेकर पिछले दो साल में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसा मेजर जो फैक्टर्स है, इसके अंदर जो भी 40 के आसपास जो भी केपीएस में बहुत सारा काम किया था, इसके ऐसा बहुत सारे काम करके ही हमने 456 रैंक से गंगानगर को थर्ड रैंक में लेके आया। हमारा कोशिश और कामयाबी यहाँ ऐसे रहेंगे और आगे वाले साल में गंगानगर का हर एक केपीए में 100% सैचुरेशन लेके आ जाए और हमारा स्टेट से भी सबसे अच्छा ब्लॉक और पूरा भारत में सबसे बढ़िया ब्लॉक करने का कोशिश पूरा जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन रहेगा।
गंगानगर ब्लॉक जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है ने स्वास्थ्य और पोषण संकेतों में 100% उपलब्धि हासिल कर एक और मील का पत्थर पार किया है। वह दिन दूर नहीं जब धलाई का या आकांक्षी जिला विकास के दृष्टिकोण से नई ऊंचाइयों को छूते हुए त्रिपुरा की समग्र प्रगति में योगदान देगा।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।